Assalamualaikum everybody, welcome to another episode of Bakhabar. This is episode 10. Thank you for staying with us in the journey. This is actually episode 11 because we had a special episode on the budget. And I hope I'm not getting that wrong. Faiz is there to correct me in a couple of moments if I did get that wrong. So episode 9 mein jo humne baat ki thi, wo baat ki thi bijli, excess bijli ki aur bijli ki kimaton ki wajah se. And we're taking this logically because हमने स्टार्ट की थी ग्रोथ के बारे में, पाकिस्तान की ग्रोथ के बारे में, जो चैलेंजेस आते हैं उसको. फिर इन्फ्लेशन के बारे में हमने काफी बात की. फिर हमने सोचा कि इन्फ्लेशन के ऊपर, इवन दो वी स्पेंड टू एपिसोड्स, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो समझना हमारे लिए लाजिम है कि खर्चा असल में हो कहाँ कहाँ रहा है और कितना जो है ना एक एवरेज पाकिस्तानी को वो खर्चे का फेस करना पड़ता है. सो वाइल electricity was about 5% of the consumption basket for most Pakistanis, which is the larger part of the issue, is housing. Ki jo ghar pe aapka jo rent hai aapka us pe jo kharcha hota hai is about 20% of the urban consumption basket and growing. So jab hum ye cheeze dekhte hain, hum dekhte hain ki not only is the money spent a fair share on these issues, it's on the rise. So jab hum baat kar rahe hote hain, you can look back at episode 1 and 2, iske masla tha Pakistan ka ki it could not it consumed too much, so it saved very little, so Pakistan could not grow adequately. To jab itna zyada in cheezon pe kharcha hona hota hai to Pakistani save aakhir fir karega kaise? So we'll have to understand, and today's topic is to understand housing, the prices and the financing. To pehle to hum ye soch jo hai wo discuss karna shuru ho jate hain Faiz ke sath कि हम as compared to our the comparable countries in the region, where do we stand? Where does housing and its pricing in Pakistan stand in comparison?
Thanks, Anand. It is indeed episode 10. तो अगर वो correct करना है इसके लिए, but ये जो share of consumption हमने पहले भी बात करी है in housing, in utilities, utilities में electricity, gas, water जैसी सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन housing is the main component. तुमने पहले बात करी है तकरीबन 30% ऑफ कंजम्पशन इज ऑन हाउसिंग एंड यूटिलिटीज, उसमें से 19 से 20% इन अर्बन एरियाज इज रेंट. सिर्फ रेंट जो है वो कोई 19% के करीब है, राइट? सो बहुत बड़ा कंपोनेंट है हाउसिंग का इन योर कंजम्पशन स्पेंड, और वो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस भी करते हैं, राइट? सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो उनकी सैलरी में से रेंट जा रहा होता है, वो काफी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन होता है उनके उसमें से. एग्जैक्ट नंबर्स, अगेन डिटेल्ड नंबर्स लेटेस्ट वाले अभी तक नहीं है. जो मैं कंजम्पशन बास्केट की बात कर रहा हूँ वो 2015-16 के नंबर्स हैं जो इन्फ्लेशन में काउंट होते हैं अभी, बट मोस्ट रिसेंटली 2018-19 में जो हमें डेटा मिला था, विच इज फ्रॉम द हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे, उसमें अर्बन एरियाज का आप देखेंगे तो कोई 28.6% ऑफ योर कंजम्पशन शेयर इज हाउसिंग एंड यूटिलिटीज, ठीक है? और इट्स इंपॉर्टेंट नोट, आपने जैसे मेंशन करा कि ये इंक्रीज कर रहा है. द प्रॉब्लम इन is less big in rural areas. उधर कोई 19% total housing utilities पे खर्च है और on average पाकिस्तान में 23.8% हो जाता है. फिर ये मैं micro level, household level की बात कर रहा हूँ. In those, in this time period, अगर आप notice करें inflation for housing in particular, you will see that it's been on the rise consistently. ठीक है? Maybe the rate of inflation has come down recently, lekin price increases kafi time se chalte aa rahe hain. So expect 2021 ye number jo hai koi 30% cross kar chuke honge in terms of share of our consumption basket. Theek hai, aapne pucha comparable countries ka kya hai, right? So if you check Vietnam, India, Malaysia, ye sab lower middle income countries jo hai Pakistan ki tarah, inka hai ranging from 15 to 17% of their share of consumption is housing and utilities. तो डबल जब आप पाकिस्तानी बेसिकली हाउसिंग यूटिलिटीज पे खर्च कर रहे हैं, एंड आई विल रिपीट, ये ऐसा प्रॉब्लम है जो आप एक्सपीरियंस एक्चुअली करते हैं. यू रियलाइज कि अच्छा, मेरी इनकम में से डिस्प्रोपोर्शनल अमाउंट जो है वो हाउसिंग, रेंट, बिजली, इन चीजों की तरफ जा रहे हैं और मेरे पास पीछे कुछ बचता ही नहीं है सेव करने के लिए. हैंस आई कैन नॉट मेक द काइंड ऑफ सेविंग्स दैट आई नीड टू डू. उसी की वजह से आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते और इवेंचुअली आपके वो सारे मसले होते हैं जिनकी हमने इन सारी 10-11 एपिसोड्स में बात करी है. सो दैट्स बेसिकली द पिक्चर व्हेन यू कंपेयर इट टू अदर कंट्रीज. आपने बहुत सुना है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम 5 मिलियन घर बनाएगा, right? For this, the 5 year latest party's 10 year, 5 million gharon ki baat ho rahi thi. Lekin aapki housing prices jo increase ho rahi hai na, wo isliye increase ho rahi hai because aapki jo shortage hai gharon ki, wo 10 million gharon ki hai. Right? You are short in Pakistan 10 million houses. Ab ye number jo hai na, main aise hi bol raha hu aapko. Main, like, there are some studies that have been done. जिसने बोला है कि हाँ 10 मिलियन की शॉर्टेज है, तो उसमें से बोला पीटीआई ने कि मैं हम आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे 5 मिलियन घर बना के. लेकिन आप देखेंगे उससे पहले पीटीआई की पीपीपी 2008 में बोला था हम भी 5 मिलियन घर बनाएंगे. यूसर अलगरा ने बोला था, नवाज शरीफ ने बोला था वो ढाई, शहबाज शरीफ वन ऑफ द प्रोग्राम्स वॉज 2.5 मिलियन घर बनाएंगे. सो सबकी जो है हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम होता है कि हम 2.5 से 5 मिलियन घर बनाएंगे, लेकिन डेटा किसी के पास भी प्रॉपर नहीं है. Right, the last census for housing was done in 1998. Us waqt aapne realize kara ke Pakistan mein us waqt population thi koi 132 million ke kareeb, right, 131.5 million. Us waqt gharon ka stock jo tha wo tha 19.3 million houses. Ye number thode zaruri hai samajhne ke liye, theek hai. 132 million population, 19-20 million ghar hai abhi, theek hai. Average, on average koi 6 se thode se zyada log ek ghar mein rehte hain. इसी को अगर आप प्रोजेक्ट आगे करते हैं ना, उसके हिसाब से आपके पास ये 10 मिलियन का नंबर आता है. और इट्स इंक्रीजिंग एट 350,000 होम्स पर ईयर और समथिंग लाइक दैट. लेकिन एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है, राइट? तो लेवल ऑफ डेटा इन पाकिस्तान इतना नहीं है. हमने ये पहले बात कर चुकी है कि सर्वेज कितने होने चाहिए, हाउसिंग सर्वे हर 10 साल में होना चाहिए, राइट? लेकिन अभी तक एज सच कुछ हुआ नहीं है. आप GDP प्रोजेक्शंस भी देखेंगे तो कभी रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ हाउसिंग देखेंगे तो आपको देखेगा 4% 4% 4% 4% 4% बिकॉज इट्स अ प्लग इन नंबर. वो अस्यूम करते हैं कि 4% हाउसिंग का स्टॉक इंक्रीज हो रहा होगा एवरी ईयर. देयर इज नो रियल डेटा अराउंड दिस स्टफ. तो शॉर्टेज बेसिकली 10 मिलियन घरों की है और इसलिए आपकी अर्बन रूरल दोनों पे इतना जोर पड़ रहा है अभी, बोझ पड़ रहा है हाउसिंग का.
सो इफ यू लुक एट शॉर्टेज है तकरीबन, कोई 10 मिलियन कहता है, कोई 12 मिलियन की फिगर देता है, कोई बोलता है कि इन द कमिंग ईयर्स 2025 तक यू विल क्रॉस 14.5-15 मिलियन शॉर्टेज ऑफ होम्स. तो ये तो बढ़ती ही जा रही है, राइट? पॉपुलेशन ग्रोथ, रूरल अर्बन माइग्रेशन, मेनी थिंग्स टू द इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू प्रोबेबली सेव समथिंग टू एंड अप ओनिंग अ हाउस. बट इसके रीजंस एक्चुअली में व्हाट हैव यू In your study, in your assessment, what are the reasons why this gap is A, existing and it's growing and we're not being able to fulfill that gap?
So gap, I think the biggest reason is affordability. Okay, Pakistan mein, and I won't talk about construction material, etc. jo housing ke wo hai. Affordability ke matlab at any given price point, chahe wo matlab 2 million ka लोन अमाउंट हो या फिर वो ऑल द वे अप टू 7-8 मिलियन का हो, अफोर्डेबिलिटी इज एन इशू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंसिंग. ठीक है, अब आपको ये, बिफोर आई गो इनटू डिटेल्स इन दिस, अगर आपको एविडेंस देखना है कि ये बोझ ज्यादातर, ये बर्डन जो है किस पे गिर रहा है, यू कैन सी इन्फ्लेशन डेटा बाय कंजम्पशन क्विंटाइल. जो हम बात करते हैं कि निचला तबका वर्सेज द रिचेस्ट इन पाकिस्तान, अगर आप देखेंगे तो निचले तबके की, विच इज एवरीवन अंडर, जो बॉटम 60% ऑफ द कंट्री है, you will see unki inflation jo rate hai of housing is higher than the average of the country. Usi se aapko pata chal raha hai ki unke liye shortage zyada hai, tabhi unke liye price increases zyada hain, unko rent zyada pay karna pad raha hai, unko bojh zyada sehna pad raha hai, right? So affordability is the big issue in these income brackets because aapke yahan koi financing facilities as such available nahi hai, right? Banks ki thodi der mein hum thodi der baad mein baat karte hain. But let's just step back and think about ke frictions kis kisam ki hain Pakistan mein ke aap mortgage industry Pakistan mein ban nahi paye, right? To sabse pehle maine affordability ki baat kari ke paisa hai nahi save karke, for example even down payment karne ke liye for loan. Theek hai, ek ye masla ho gaya. Dusra masla ho gaya interest se generally Pakistanis, and like I'm not sure exactly what the numbers are, lekin state bank ne survey kar chuka hai iska bhi ke interest se kaun dur bhagta hai, right? And I think the number was something like over 90% don't want to do partake in interest and take a loan on mortgage or something like that. जब आप इंटरेस्ट में नई पार्टी करना चाह रहे, यू नीड एन इस्लामिक शरिया कंप्लायंट इक्विवेलेंट कंपेरेबल, जो के भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो गया, इट स्टिल हैजंट रियली टेकन ऑफ. तो ये बेसिकली जो मसले है ना, इसकी वजह से लोग लोन्स नहीं लेते. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज वेल पाकिस्तान में ऐसा कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. लैंड राइट्स, डिजिटाइजेशन शुरू हुई थी पंजाब में ऑफ योर लैंड यूनिट्स, आई थिंक उसमें भी कोई अभी तक फुली कंप्लीट नहीं हुई है. सो देयर इज नो प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग कि किसका, अगर मेरा गवादर में फॉर एग्जाम्पल बहुत एक जमाने में बातें शुरू हुई थी कि किसी ने पेपर फाइल खरीदी गवादर की और वो लिटरली सी में था प्लॉट, राइट, वो समंदर बेसिकली बेच दिया था बिकॉज देयर इज नो रियल ट्रैक, यू नो, रिकॉर्ड ऑफ के लैंड राइट्स आपकी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये साइज होगा, इट्स ऑल पेपर वर्क, कहा इधर से फाइल उधर कर दी, कुछ अंदाजा नहीं है. बेसिकली लोग डरे हुए, ठीक है. सो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, इंटरेस्ट बैंकिंग इन जनरल से लोग भागते हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज सच नहीं है पाकिस्तान में, विच इज वाई डिमांड साइड से इतना पुश नहीं आ पाया, इसकी तरफ पुल नहीं आ पाया अलग से. सप्लाई साइड पे अगर आप देखें तो हिस्ट्री बहुत जरूरी है पाकिस्तान की ये समझनी के बैंक्स, व्हाई हैव बैंक्स बीन एबल टू डेवलप अ मोर्टगेज इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ठीक है. पहली बात सबको समझने की ये होगी कि मोर्टगेज इंडस्ट्री इज अ मस्ट फॉर हाउसिंग एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है. पाकिस्तान की मोर्टगेज इंडस्ट्री अभी कोई 0.29-0.3% ऑफ जीडीपी आती है टोटल, जो हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखें परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इंडिया में वही चीज 10% है, ठीक है. इंडिया के भी मसले बहुत हैं इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग, लेकिन वो फिर भी 10% है. आई थिंक द साउथ एशियन एवरेज इज समथिंग लाइक 3.4%, हम लोग उसके 10 गुना कम है, राइट. कुछ ना कुछ तो मसला चल रहा है ना पाकिस्तान में, अगर हम 10 गुना कम हमारी मोर्टगेज पेनिट्रेशन है. एंड यू विल सी एवरीवन, एवरी पॉलिटिशियन, एवरी ब्यूरोक्रेट, स्टेट बैंक भी बात करता है कि हमें हाउसिंग फाइनेंस की पेनिट्रेशन इंक्रीज करनी है. वो हाउसिंग फाइनेंस की पेनिट्रेशन इसलिए इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि आप फिर मोर्टगेज इंडस्ट्री डेवलप करें, आप उसके हिसाब से लोगों को पैसे दे सकें ताकि वो जाके घर बनाएं या फिर घर खरीदें, और फिर उनकी जो ये शॉर्टेज है उसमें कमी आए. बट बिकॉज वो इम्प्रूव कर ही नहीं पा रहे दिस नंबर इज एक्चुअली कीप्स ऑन गोइंग डाउन. तो अगर आप चार्ट देखेंगे, थोड़ी सी अगर मैं हिस्ट्री बताऊं, 98 में जब सेंसस हुआ था उसी वक्त पता चला कि 4 मिलियन घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, ठीक है, 98 में, कोई 22 साल पहले. तो 4 मिलियन घरों की हाउसिंग का शॉर्टेज का जब पता चला तो गवर्नमेंट जब तक जो है मोनोपोलाइज करती थी हाउसिंग फाइनेंस बिकॉज इट वॉज सो क्रिटिकल. हमारी एक चीज है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर हाउस फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, जो कि 1950s में बनी थी. उसके बाद 50 साल की उसकी मोनोपोली थी, ठीक है, कुछ ऐसा काम नहीं करा. शुरू में उसके सिर्फ अर्बन फोकस होता था, फिर जाके रूरल एक्सपैंड हुआ. इट वॉज रन लाइक अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, नो रियल कॉर्पोरेटाइजेशन ओवर देयर, एंड वाजंट रियली एबल टू अचीव एनीथिंग मटीरियल. फिर जाके प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट उन्होंने इनकरेज करनी शुरू करी. After you had to introduce some laws, 2001 में हमारी आई थी Recovery of Finance Act. हम ज़्यादा details में नहीं जाएंगे, but just understand कि किस flow में ये आपकी mortgage industry develop हुई है. So 2001 में Recovery of Finance Act निकला, जिसमें था foreclosure laws जैसे चाहिए होते हैं. अगर bank ने आपको पैसे दिए, आपने bank को पैसे वापस नहीं दिए, तो bank क्या कर सकता है, right? उसका recourse क्या है? उस सब की डिटेल्स डेवलप होनी शुरू हुई. 2003 ऑनवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने फिर पैसे देने शुरू करे, और बीच में इस्लामिक फाइनेंसिंग भी आ गई इसमें, आई थिंक अराउंड 10-ish. और आप देखेंगे हमारी पेनिट्रेशन इंक्रीज हुई, स्टार्टेड इंक्रीजिंग, रीच्ड 1% ऑफ जीडीपी, एंड देन स्टार्टेड फॉलोइंग अगेन. अब इसमें मसला क्या हुआ कि जब बैंक्स को राइट दे दी फोरक्लोजर लॉज में कि अगर बंदा इफ अ पर्सन डिफॉल्ट आप उसका घर ले सकते हो विदाउट गोइंग टू कोर्ट, ठीक है, ये बेसिकली उनको परमिशन दे दी थी, विच इज द सेम अक्रॉस द वर्ल्ड बाय द वे, राइट. आप डेवलप मार्केट में भी देखेंगे तो वो रिकोर्स देते हैं कि अगर आपने ऑब्वियसली कोलैटरल रखवाया घर और आप घर गिरवी रखवाया घर और आप उसको आप उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे तो आपसे वो ले लेगा बैंक और फिर वो आके बेच देगा. पाकिस्तान में उन्होंने एडेड एक वो कॉम्प्लेक्सिटी डाली कि आपको बैंकिंग कोर्ट जाना पड़ेगा, उधर जाके फिर जज विल डिसाइड. बैंकिंग कोर्ट्स भी आपके मतलब केसेस आई डोंट नो इन द थाउजेंड पड़े हुए सॉल्व नहीं होते. तो बेसिकली उसमें जब पुश बैक थोड़ा बहुत आया कि नहीं आपको जाना पड़ेगा बैंकिंग कोर्ट, तो फिर मैक्स ने कम लैंडिंग करना शुरू कर दी, फिर जाके वेट बैक एंड फोर्थ, लाहौर हाई कोर्ट ने मसला कर दिया कि नहीं दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू राइट टू फ्री ट्रायल एक चीज होती है, तो अगर डिफॉल्ट भी कराए बंदे ने उसको ट्रायल मिलना चाहिए. दिस इज जस्ट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन जनरल. फिर जाके जब आपने ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लॉन्च करना शुरू की, यू रियलाइज दैट इट विल नॉट रियली वर्क विदाउट फाइनेंसिंग, और जब आपकी लॉज अच्छी नहीं है, दे आर नॉट कंड्यूसिव टू लेंडिंग फॉर बैंक्स, तो आपको ये दिस इज अ पाइप ड्रीम दैट विल नेवर कम ट्रू. फिर जाके एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला ये लॉ चेंज करो वरना हम आप लोग ग्रांट नहीं देंगे. बेसिकली एज सिंपल एज दैट, जो उनको लोन देना था, ग्रांट देना था फॉर हाउसिंग, उन्होंने बोला यू नीड टू फिक्स दिस. तो फिर आपको याद होगा कि आई थिंक हेडलाइन भी निकली थी कि प्राइम मिनिस्टर आस्क द जुडिशरी टू स्पीड अप दिस प्रोसेस, विच इज टेक्निकली नॉट डेमोक्रेटिक एट ऑल बिकॉज द जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, लेकिन ये हुआ था. और फिर जाके वो सॉल्व अब हो गया है, लेकिन अभी भी है. सबको बैंकर्स को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, तो कभी भी ये हो सकता है कि बैंक से वो जो उनके पास अपॉर्चुनिटी अभी सीज करने की लैंड वो लेके चले जाए. तो इस पूरी कंफ्यूजन की वजह से जो है बैंक्स हैवन्ट बीन एबल टू यू नो गिव आउट हाउसिंग फाइनेंस एज मच एज पॉसिबल. अगर वो देते हैं तो वो अपने एम्प्लॉयज को देते हैं फिर. सो यू विल सी व्हेन यू ब्रेक अप द डेटा 50% ऑफ हाउसिंग लोन्स गो टू बैंक एम्प्लॉयज. बैंक एम्प्लॉयज कितने ही होंगे लेकिन उनको 50% जाता है, एंड दैट्स प्राइमरीली बिकॉज बैंक्स को पता है दे कैन ट्रैक देयर एम्प्लॉयज इनकम्स फॉर द फ्यूचर. ठीक है, तो ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट है अपने एम्प्लॉयज को लोन देना फॉर हाउसिंग रादर देन किसी भी यू नो रैंडम पर्सन को देना, बिकॉज उसमें इतनी कोई सिक्योरिटी नहीं है बैंक के पास. सो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि वो इतनी एक्सपेंशन नहीं हुई है बिकॉज हमारी लॉज सपोर्टिव नहीं है. और भी थोड़े से रीजंस हैं दैट वी कैन गेट इनटू इन अ लिटिल व्हाइल.
सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से नेक्स्ट वर्स कि यार जो मॉर्गेज का जो वर्टिकल है, जो स्पेस है, वो टेक ऑफ क्यों नहीं कर पाया. अगर आप बैंक को भी देखना शुरू करते हैं, उसकी कोर, उसका एसेंस, उसका ईथॉस देखना शुरू करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे चले गए, लेंडिंग फॉर ट्रेड, लेंडिंग टू पब्लिक कॉर्पोरेशंस, द बिगर इट, जहां देखो बैंक का काम इट्स नॉट वेंचर कैपिटल. द काम इज टू यार कम से कम रिस्क पे रखा जाए. सो इन द नेचर ऑफ द बैंक्स, जहां जो तबका होगा जिसके अंदर प्रॉब्लम होगी फॉर रीपेमेंट, ये प्रॉब्लम आएगा. दिस इज माई असेसमेंट, ऑब्वियसली फैज़ विल बी एबल टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो वहां ऑब्वियसली इंसेंटिव और एंथुजियाज्म विल नॉट बी एज हाई. ऑब्वियसली आपकी पोलिटिकल एंथुजियाज्म वॉज हाई बिकॉज 5 million होम्स हैव टू बी क्रिएटेड. पास में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन जिन इदारों को आपके साथ इन कंजंक्शन काम करना है टू मेक दिस पॉसिबल, एंड द प्राइम जो इसका फैक्टर है विच इज मॉर्गेज फाइनेंसिंग और हाउस फाइनेंसिंग, वो अगर आना बैंक से है, तो बैंक जो रिस्क रिवॉर्ड का उनका रेशो है, जो इंसेंटिवाइजेशन है उनकी, मतलब उनके पीछे डंडा लेके तो नहीं भाग सकते. इवन दो स्टेट बैंक ने पेनल्टीज रखी ऑन द टारगेट्स, बट वी डिस्कस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लेटर ऑन. सो ये मुझे तो यही प्रॉब्लम लगता था कि बैंक्स के पास इतना वो खास इंसेंटिव नहीं है, विच इज 0.23% ऑफ द GDP पे हम लोग इसलिए भी बैठे हुए हैं क्योंकि क्यों, मतलब क्यों करें, इट्स नॉट एज फीजिबल, especially in the low income housing jo strata. Achha, before we move on to any particular project aur jis tarike se hum baithe hue hain, iske kuch jo housing shortage hai, iske kuch implications bhi hai, social implications bhi hai. Iska ek maksad to ye dekhna ke wo jo shortages hain to aa kahan se rahe aur unko fulfill kaise kiya ja raha hai, right? So jab kisi ke ghar, kisi ke sar ke upar chhat na ho, to how are they accommodated? Could you let the viewers know a little bit about that?
Great question. So, isme basically ek study hui thi jisme pata chala tha ki ye jo chahe wo 8 million shortage ho, 10 million shortage ho, 12, 14 jo bhi shortage hai, percentage terms mein jaise wo puri ho rahi hai, the biggest chunk 60% around that is fulfilled by informal subdivision of agricultural land. Kafi lamba term hai isko, ISLs generally bolte hain. Think of the area around Beria town in Karachi, think of outskirts of cities jo agricultural land hota hai lekin ab usme abadi reh rahi hai. Dusra jo bada chunk hai 25% is the Kachi abadi slums जिनका हमने देखा होगा, जो कि कंप्लीटली इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं. और अगला जो 15% है, इट्स फर्दर डेंसिफिकेशन ऑफ सिटीज के. कराची में पहले कोई 2 लोग पर कमरा रह रहे थे, अब 3 लोग पर कमरा रह रहे हैं, जस्ट टू अकोमोडेट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. अंडरस्टैंड के पाकिस्तान का पर्सन पर रूम रेशियो इज ऑलरेडी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, लोग ऐसी चीजें भी रिकॉर्ड करते हैं डेटा. सो इंडिया में आई थिंक इट इज 2.7% पर रूम, पाकिस्तान इज 3% पर रूम, विच इज क्वाइट हाई. थिंक अबाउट के हर कमरा जो है पाकिस्तान में उसमें 3 लोग ऑन एवरेज रह रहे हैं. सो बहुत डेंस, which leads to all sorts of hygiene issues, sanitation issues. आप सोचे mental health की हमने बात कर चुकी है पहले, all sorts of issues that are coming about livelihood की जो आपके आ रहे हैं because of this housing issue. Inflation की हमने पहले से बात कर चुकी है. Again, सबसे ज्यादा affected are the lower तबका, lowest income quintile में जो सारे हैं, और वो ही लोग हैं जो loans के लिए अप्रूव भी इतनी आसानी से नहीं होंगे. सो आपने बैंक्स अगर शुरू भी कर दिया है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर, मॉर्गेज फाइनेंसिंग प्रमोट करनी शुरू भी कर दी, एंड योर यू नो रिक्वायरमेंट्स आर सच के उसमें सिर्फ लोएस्ट तबका अप्लाई कर सकता है. वो जब अप्लाई करने जाएगा, दे विल नॉट हैव द नेसेसरी यू नो एक स्किल सेट चाहिए आपको इवन टू गेट योर लोन अप्रूव्ड. ठीक है, एक लेवल ऑफ एजुकेशन चाहिए आपको टू गेट दैट लोन अप्रूव्ड. फैसिलिटेशन डेस्क उन्होंने थोड़ी बहुत सेटअप की है, but I still think they will find it really hard to get loan approvals at that level. But in general, that's the biggest consequence of the shortage ki aapki ek pricing crisis hui aur densification of inner cities in general.
Got it. And ye bhi samajhna shayad zaruri hai, and you can correct me if I'm wrong, ke one of the reasons why this is happening is a law has a lot to do with rural to urban migration. And that happens because ki economic opportunities jo hain are concentrated in a few centers, primarily Karachi. Ab jaake Islamabad, Lahore ka utha le. Obviously, across industries, it will vary. Lekin rural to urban economic opportunities ke liye karte hain. Agar aap C-level, mid-level managers wagera, in sab ko chod ke bhi dekhe hain, आपकी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपकी फैक्ट्रीज जो हैं, आपकी सारी चीजें अगर लोकेटेड इन जगह पे होंगी, आपको जिन वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी इन कंस्ट्रक्शन इन फैक्ट्रीज, तो वो जब आएंगे भी तो वो रहेंगे कहाँ? सो गोइंग टू अ न्यू फॉर दोस पीपल हु इवन गॉन अप और ग्रोन अप इन प्रीटी अफ्लुएंट फैमिलीज और इवन अपर मिडिल क्लास फैमिलीज, नई जगह पे जाना सिर्फ नौकरी ढूंढने के लिए भी बहुत खासा मुश्किल है. आप ये फैक्ट्रियां कोई रीलोकेशन एक्सपेंस मेरे ख्याल में नहीं देती होंगी आपको, जो 3 महीने की आपको सैलरी उठा के देती कि कोई मसला नहीं जिगर आप कर ले लो. सो दैट इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम. जो कच्ची आबादियों पे भी काम कर रहे हैं, दो हजार आप जाके इस्लामाबाद की टेरिटरी पे देख लें, जो आपको बहुत प्यारा शहर नजर आता है, लेकिन वहां भी ये प्रॉब्लम है. और कराची में तो आपको सौराबगोट पे घुसते ही आपको मिल जाएगी, सो यू विल बी वेलकम बाय दैट. दोज पीपल हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम of having nowhere to live, जहाँ के हर रोज आके कोई ना कोई regulatory body उनको आकर बोलती है कि आप अपना जो है ना घर उठाकर, जो भी इन्होंने बेचारों ने बनाया होता है वो उठाकर ले जाओ. So it goes beyond just saying this episode was done just not only because क्या 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 रुपए का rent अगर मैं दे रहा हूँ सोल्जर बाजार में या बादराबाद पे, सोल्जर बाजार बादराबाद या क्लिफ्टन में, तो यार मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है. लेकिन जहां से ज्यादातर हाउसिंग की शॉर्टेज आ रही है या जहां से ज्यादातर स्क्वीज आता है जिस तबके को, वो तबका और उससे भी निचला तबका जो कच्ची आबादियों में रहता है, उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है. ये कहना बड़ा आसान है कि जहां से आए हैं उनको वापस भेज दो, दैट इज सेंटिमेंट and a very inhuman sentiment. So, इसको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ गवर्नमेंट से थोड़ा काम किया होगा, बट आई थिंक फेयर गो ऑन टू एक्सप्लेन कि अभी नया पाकिस्तान जो है वो क्या जो है या मुआवजा अंजाम पे पहुंचाएगा, एंड क्या कैपेसिटी है उसकी, व्हाट आर थिंग्स वी आर डूइंग राइट एंड व्हाट आर थिंग्स वी आर डूइंग रॉन्ग. सो फेयर अ लिटिल बिट अबाउट नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम. सॉरी
Again, I tend not to get political, लेकिन हमने बजट में अभी देखा था. सो सबसे पहली चीज जो मैं बिफोर आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, सबसे पहली चीज जो बोलूंगा, हमने बजट में नोटिस करा था पिछले साल 30 बिलियन रुपए की सब्सिडी दी जाएगी फॉर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, और सिर्फ 5 बिलियन रिलीज किए गए थे. राइट, दैट नंबर्स वी हैव फॉर लास्ट ईयर. अगले साल का देखेंगे क्या खर्च करते हैं वापस 30 बिलियन एलोकेट हुए हैं. सो आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल इट इज गोइंग, लेकिन मैं इन प्रिंसिपल आपको एटलीस्ट फ्रॉम द फाइनेंस साइड एक्सप्लेन कर थोड़ा बहुत करता हूँ कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम डिफरेंट कैसे हो सकती है कंपेयर टू एवरी अदर थिंग दैट वॉज इंट्रोड्यूस बिफोर. ठीक है, जब आपका ये बिकॉज हाउसिंग को सक्सीड करने के लिए पूरा इकोसिस्टम एक डेवलप करना है. बैंक्स तो एक चीज हो गए, लेकिन बैंक्स आप बोल रहे कि दे इन्वेस्ट इंस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, इजी इंस्टेड ऑफ गिविंग लोन्स टू रिस्कियर पीपल. लेकिन बैंक्स को पैसा मिल भी कहां से रहा है? राइट, जो उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं दे आर यूजुअली शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स. तो बैंक्स के पास लॉन्ग टर्म जो एक लाइबिलिटी बेस होती है ना, जो उनकी डिपॉजिट बेस होनी होती है फॉर विच दे कैन देन दे कैन टेक दैट. और फिर 20 साल की मोर्टगेज आपको देते हैं. घर के तो लोन होगा तो 15-20 साल की लोन होता है, लेकिन वो 15-20 साल का लोन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के साथ फाइनेंस नहीं कर सकते. उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग चाहिए होती है टू यू नो मेक द रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क जैसे आपने बोला वर्क. तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है इसको सेटअप करने के लिए एक वर्ल्ड बैंक के साथ वर्ल्ड पाकिस्तान मोर्टगेज रीफाइनेंस कंपनी खोली जा रही है. राइट, 2017-18 में खुली थी, बट नाउ इट्स फाइनली कमिंग इन टू इट्स ओन थ्रू द और ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को सपोर्ट करना चाहिए. सो एक ये बड़ा चेंज आया है कि PMRC इसको जैसे बोलते हैं, इट माइट फाइनली इन्वॉल्व इन टू समथिंग दैट्स बिग. इसका इवेंचुअल प्लान जो है आई थिंक इट्स एट लेवल 2 राइट नाउ. लेवल 3 प्लान जो है, जो आपने पूरा US क्राइसिस का सुना है ना, 2008 का कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस, और हम सब चीजों का एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन जो पूरा क्राइसिस हुआ था उनकी फैंसी इंस्ट्रूमेंट जो थे फाइनेंशियल, वो सब PMRC इवेंचुअली सपोर्ट कर सकेगी. दैट्स द एम राइट नाउ. सो बेसिकली काफी स्पेशलाइज्ड रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन बन जाएगी फॉर मोर्टगेजेस, ताकि बैंक्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मिल जाए. ठीक है, बैंक्स अलोन डोंट नीड दिस मनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनको ये पैसा देना होगा. डेडिकेटेड हाउसिंग एक तो है हमारी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो HBFC की मैंने बात करी, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, लेकिन और भी डेडिकेटेड आपको छोटे छोटे बैंक्स चाहिए होंगे हाउसिंग से के स्पेशलिस्ट हु विल आल्सो बेनिफिट इवेंचुअली फ्रॉम PMRC. ठीक है, एक तो ये बड़ा चेंज आ गया. दूसरा चेंज आ गया कि आपके पास बैंक्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी दे दें तो वो इतने रिस्की कस्टमर्स को पैसा कैसे दें. ठीक है, तो एक क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट भी शुरू किया गया है. आई थिंक कोई 2% चार्ज होगा बैंक्स के लिए, ऐसी कुछ होगा. फॉर दैट आई थिंक फर्स्ट लॉस अप टू 40%, एंड दीज नंबर्स यू कैन फॉरगेट अबाउट. पॉइंट इज के हो रहा है ये चीजें कि बैंक्स को फिर क्रेडिट गारंटी मिलेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि आप इनको पैसे दें और हम इसका एटलीस्ट अगर आपको लॉस हुआ अ पोर्शन ऑफ दैट वी विल टेक द लॉस फॉर इट. ठीक है, ये सारी ऑल ऑफ दिस इज वेयर द सब्सिडी गोज इन. ठीक है, ये दो बड़ी चीजें अभी शुरू गई, आई वुडंट से शुरू की गई हैं, ये अभी दे जस्ट कम इन टू देयर ओन राइट नाउ, थोड़ी प्रोमिनेंट बन गई है. बेस्ट मेरे हिसाब से जो है वो है स्टेट बैंक की मार्कअप सब्सिडी. तो मार्कअप सब्सिडी अगर आप उसको देखें तो अगर लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, जो लोएस्ट टियर है उनकी सब्सिडी में उसको अगर बैंक्स जो है 14-15% पे लोन देते 20 साल का, उसको स्टेट बैंक के थ्रू सब्सिडी के थ्रू 7% पे लोन मिलेगा. ठीक है, दैट्स ऑलमोस्ट 7% की सब्सिडी. राइट, अगर 14% का होता है और 7% के उसको एंड में एंड यूजर फाइनेंसिंग 7% में मिल रही है, 7% वो सेव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स. अब इसमें जो टोटल एलोकेशन हुई है सब्सिडी की कोई 36 बिलियन के करीब हुई है. राइट, तो मैं बेस्ट प्रोग्राम की भी आपको बात करूं मेरे हिसाब से तो उसकी मैं अगर थोड़ी इफेक्टिवनेस बताऊं कि अगर आप एक घर लें और 2 मिलियन का आपने लोन लिया हो लोएस्ट ईयर पे, and you take the typical जो आपकी loan requirements होती है उसके हिसाब से करेंगे तो आपकी जो सब्सिडी आपके ऊपर आएगी ना वो कोई 1.3-1.4 million रुपीज पर हाउस पे आएगी. ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स ओवर 20 ईयर्स काफी सारी होंगी और अगर 7% का डिफरेंस है तो बहुत ही ज्यादा सब्सिडी चाहिए होगी टू मेक श्योर कि वो घर बना सके एट अ लोअर इंटरेस्ट लेवल. लेकिन अगर ये 1.3-1.4 को आप 36 बिलियन से डिवाइड करें तो आपको आएगा एंड में के इस प्रोग्राम के थ्रू सिर्फ 26,000 घर बन सकते हैं एट द लोएस्ट ईयर, सिर्फ 26,000. सो मैं आपको बेस्ट प्रोग्राम का मेरे हिसाब से कंपैरिजन बता रहा हूँ कि उसको अगर आप लेके चले उसमें भी सिर्फ 26,000 घर 30,000 कर ले चले बन सकते हैं, एंड योर शॉर्टेज इज 5 मिलियन हाउसेज, रिमेंबर दैट। तो अब इस सबको लेके एंड में स्टेट बैंक ने बोला है, जैसे आपने बोला कि पेनल्टीज लगाने वाले हैं, कि द बैंकिंग सेक्टर 5% ऑफ देयर पोर्टफोलियो हैज टू बी हाउसिंग, ठीक है, ये अब रिक्वायरमेंट आ गई है। उसमें हाउसिंग में चले सिर्फ हाउस बिल्डिंग नहीं है, REITs जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह, बाकी सारी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट भी हैं, लेकिन 5% तक लाना पड़ेगा इनको अपने पोर्टफोलियो का। जस्ट टू लिंक इट बैक टू, हम जो पहले बात कर रहे थे कि मोर्टगेज पेनिट्रेशन पाकिस्तान में 0.2% समथिंग है, तो अगर ये 5% कर लें तो पाकिस्तान का है प्राइवेट क्रेडिट टू GDP, सॉरी क्रेडिट टू GDP अराउंड 60%, तो 60% इंटू 5% गिव्स यू 3%। तो अगर ये 5% ऑफ पोर्टफोलियो अपना बना लेते हैं मोर्टगेज का, तो हमारी मोर्टगेज पेनिट्रेशन 3% ऑफ GDP बन जाएगी। सो देन इट विल कम इन लाइन विद साउथ एशिया, तभी ये 5% का टारगेट प्रॉबेबली लगाया गया है। तो दिस इज जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, के ये सब अगर ऑफ ऑल ऑफ दिस कम्स टुगेदर और 5% ऑफ पोर्टफोलियो हाउसिंग फाइनेंस हो गया, तो हम वी माइट कम एट द सेम लेवल एज द रेस्ट ऑफ साउथ एशिया। लेकिन अंडरस्टैंड के इस पूरे अमाउंट को भी हम अगर हम ले लेना, जो पूरा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पूरा पोर्टफोलियो जो नया नया जो ये बैंक्स का होगा वो नए लोन से होगा, सो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस, क्योंकि ऑब्वियसली पुराने लोन भी होते हैं, तो ये नया लोन हो सारे आप हाउस बिल्डिंग की तरफ ही जाए सारे अमाउंट्स, तो फिर भी मुश्किल से जो है आप 1.5 लाख घर फाइनेंस कर सकेंगे इसके थ्रू, विच अगेन इज नॉट इनफ। तो मैं बेसिकली सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ फॉर पीपल टू रियली अंडरस्टैंड कि शॉर्टेज कितनी बड़ी है, 10 मिलियन घरों की 5 मिलियन का एम्बिशन है, और अभी आई एम नॉट सेइंग कि सब के सब फाइनेंसिंग के थ्रू घर बने जाएंगे, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा या 2 लाख से ज्यादा मुझे बनते हुए नहीं दिख रहे थ्रू द नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम सो फार, एंड दैट इज एविडेंट इन जो आपकी ये सारी यूटिलाइजेशन भी हो रही है बजट की, कि 30 बिलियन बजट करा सिर्फ 5 बिलियन गया। आई थिंक दैट इज मोर और लेस हाउ मच विल बी यूज्ड अप लेटर ऑन।
तो जो मुझे फिगर याद है, आप लोग अपने एंड से भी रिसर्च कर सकते हैं, जो मुझे लगता है एक तो हो जाती है एप्लीकेशंस, राइट? सो दिस इज मेरा पाकिस्तान मेरा घर MPMG, इफ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग, तो ये तो उसकी हाउस फाइनेंस जो मार्कअप पे आपको सब्सिडी मिली हुई है, ये इसकी स्कीम है विच द स्टेट बैंक इज वर्किंग इन कंजक्शन विद द बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। इसकी जो एक तो हो जाती है एप्लीकेशंस आपको चले आ भी सकती हैं कंसिडरिंग के सारे बैंक्स अगर एक्टिव हो भी जाए। फिर होती है एज ऑफ मे 2021, अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप 5-10 सेकंड के लिए सोचेंगे कितनी एप्लीकेशंस आई होंगी, इट्स बीन अ गुड 8 months और सो सिंस इसने किया होगा, तो आई थिंक वी स्टैंड एट 600 लोन अप्रूव हुए। आप फिगर देखें जो अभी आपको फैज ने कहा है, कहां हमें पहुंचना है, 5 मिलियन छोड़ें, 4 मिलियन छोड़ें, 2 मिलियन छोड़ें, 3 मिलियन छोड़ें, अब आप बात कर रहे होते हैं रफली रियलिस्टिकली भी 1.5 से 2 लाख घरों की भी अगर आप बात करें, तो आप 600 लोन्स पे आज खड़े हैं। 2023 तक दिस इज गोइंग टू बी स्टिल गोइंग टू बी अ चैलेंज। व्हाट आईड वांट फेस टू प्रोबेबली एंड विथ, सिंस दिस इज बीन एन एंगेजिंग डिस्कशन जिसके ऊपर अच्छा खासा कवर किया, कुछ छोटा नहीं है topic, if you really really want us to do an episode, otherwise we can provide with you with the material, we'll try and work, ke jo ye housing ki jo financing scheme hai, state bank ki tier 1, tier 0, tier 2, tier 3, kya markups hain, kya requirements hain, kya changes aayi hain March mein, because I do believe personally ke the state bank has been very active and has been smart about this because it's inching towards the changes that is needed to make this actually work. अदरवाइज ये कागज पे एक चीज रह जाएगी जिसके बहुत सारे इश्तेहार आप वेबसाइटों पे और न्यूज़पेपर्स पे देखेंगे, लेकिन इट वोंट अमाउंट टू मच, सो वी कैन डू दैट काइंड ऑफ एपिसोड और डू दैट काइंड ऑफ रिकॉर्ड, वन ऑफ अस और बोथ ऑफ अस, व्हाटएवर। व्हाट आईड लाइक फेस टू सॉर्ट ऑफ एंड विद इज के जो हाउसिंग का शॉर्टेज है, आपने देख लिया कि यार प्रोजेक्शंस क्या है, व्हाट नीड्स टू बी डन मोर ऑन द गवर्नमेंट साइड, probably on incentivizing the banks, because dekhiye iske sath 40 30 32 takriban industries judi hui hain naye ghar banane mein, steel hai, cement hai, jo hai darwaze banane mein se lekar pankhon tak, copper tak, ye sare jude hue hain, which is why I think you also need, it's pertinent to understand ये जो ये पूरा ड्राइव हो रही है दिस इज मोर टूवर्ड्स न्यू हाउसेज ऑल्सो बिकॉज एक साल का जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि एक साल से पुराना घर वगैरह नहीं हो दिस इज मोस्टली टूवर्ड्स कि नए से घर बने क्योंकि इकोनॉमी को भी तो आगे ऑब्वियसली यू हैव टू पुश दैट फॉरवर्ड. What more do you think? What have you felt, KR, on in your assessment? What more can the government do? What can the banks do? I'll probably in terms of even jo bank ke employees ki ka reaction hai. I can probably end on that. But what is your assessment? How can this be made better? How can we go from this meager figure to an even better figure? Because 5 million to thoda sa. एटलीस्ट मुझे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है.
नहीं बिल्कुल, हाँ मुझे भी मुश्किल ही लग रहा है. बट आई थिंक आप हिस्ट्री देखें एंड आई थिंक द यूएस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ के उनके अगर आप देखें ना वर्ल्ड वॉर वन के बाद उनकी भी शॉर्टेज जो थी कोई 4 मिलियन घरों की थी या ऐसी कुछ तो 2 से 4 मिलियन घरों के बीच में थी. एंड दैट्स व्हेन द यूएस स्टार्टेड रीवाइटलाइजिंग इटसेल्फ. ठीक है, द न्यू डील जो उनकी आई थी कंस्ट्रक्शन डिप्रेशन के बाद यू विल सी के what helped their financing or my financing pe zyada focus isliye kar raha hu because and you will talk to other people and they will say ke ha aapki imported cost bahut zyada hai housing mein so aapke taps jo lagte hain for example ya tiles jo lagte hain wo bahar se aa rahe hain ya aa rahe hain aur local production as such nahi zyada nahi hai isliye cost zyada ho gayi hai. log kuch log modular housing ki baatein karte hain ki aap wo banana shuru kar dein. kuch log bolte hain ki regulation change karni padegi so that you build upwards या फिर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग ज्यादा बनानी शुरू करने. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ. मैं लाइक जस्ट बिकॉज़ इट्स समथिंग दैट आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड इन. फाइनेंसिंग की अगर ज्यादा बात करूं आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, राइट? अगर आप एक कमर्शियल बैंक से एक्सपेक्ट करें कि वो एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी लैंड करेगा, वो कॉर्पोरेट्स को भी लैंड करेगा, वो आपके एग्रीकल्चर को भी लैंड करेगा, फार्मर को भी लैंड करेगा और हाउसिंग फाइनेंस भी करेगा, आई थिंक ये बहुत गलत है. लाइक यू शुड हैव अ स्पेशलिस्ट हाउसिंग बैंक. इसमें यूएस में जो होते थे पहले सेविंग्स एंड लोन्स रीजनल बैंक्स होते थे, छोटे छोटे बैंक्स होते थे जिसको फॉर एग्जांपल पता है इस इलाके का. अगर मैं कराची साउथ की बात करूँ एक डिस्ट्रिक्ट को ले लूँ, उसको डिस्ट्रिक्ट में अंदाजा है कि कौन से लोग हैं किसके हु इज रिलायबल हु इज नॉट रिलायबल. उधर से ही उसने सेविंग्स ली, उधर से ही उसने लोन्स दिए, राइट? जो इट इज अ ट्रू ट्रांसफर ऑफ यू नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल के लोग उधर ही सेव करते हैं उसी रीजनल बैंक में और उधर ही जाके हाउसिंग फाइनेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड बिकॉज एवरीवन नोज एवरीवन एल्स इट इज इजियर एंड लेस रिस्की. ये बाय द वे शौकत तरीन ने मेंशन कर चुका है, सो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि उसने ही मेंशन्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे स्पीच कि हमें रीजनल बैंक चाहिए और हमें छोटे बैंक चाहिए. आई थिंक तो छोटे बैंक प्लस स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें चाहिए. HBFC आपकी एक ही जो है, इट्स लाइक आई डोंट इवन वांट यू टू लुक एट द एनुअल स्टेटमेंट बिकॉज अगर आप देखना शुरू करेंगे आप बोलेंगे मतलब लाइक व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. जैसे फैनी मे या इसकी अगर आपने फ्रेडी मैक अगर इन सब की यूएस की सुनी हो बातें, दीज आर इंस्टीट्यूशंस एंड अ हाफ. लाइक देयर एसेट साइज जो वो लोन साइज है उनकी एज बिग एज द यूएस GDP. ठीक है, तो इतने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है वो और उनकी वजह से हाउसिंग इन द यूएस वाज सॉल्व्ड फॉर एग्जांपल. बाकी सारे कंट्रीज ने जो ना हैव बीन थ्रू अ वेरी सिमिलर जर्नी. तो ये हमेशा पाकिस्तानियों को याद रखना चाहिए है एवरीथिंग दैट वी स्पीक अबाउट ओवर हियर. यस इट्स यूनिक टू पाकिस्तान के अब तक हमारे ये मसले चल रहे हैं, लेकिन ये जो जर्नी है ना फ्रॉम अ पुअर कंट्री टू अ लो इनकम कंट्री टू अ लो मिडिल इनकम कंट्री टू अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री, ये सारे कंट्रीज वेंट थ्रू मोर और लेस द सेम थिंग. ठीक है, तो ये हाउसिंग का मसला भी सबके ऑल ऑफ देम हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड वी कैन पिक एंड चूज एंड लर्न के किस तरह इनको टैकल किया जाए. सो फॉर मी आई थिंक द वन थिंग दैट यू कैन डू इज एक्सपैंड एंड नॉट ओनली फोकस ऑन कमर्शियल बैंक्स. आप छोटे बैंक्स को लेकर आए और आप डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लेकर आए एंड देन सी के उनकी अंडरराइटिंग प्रोसेस कैसे बेहतर होता है. वो यू नो अगर 37,000 रुपीज से कम, व्हिच इज व्हाट 80% ऑफ पाकिस्तानी हाउसहोल्ड्स अर्न, उससे अगर कम आता है एप्लीकेशन के साथ उसको कैसे डील करना है, व्हाट काइंड ऑफ स्टफ कैन दे एक्सेप्ट एज कोलैटरल, गारंटी किस किस्म की लेनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उनकी इनपुट्स ज्यादा अच्छी होंगी बनिस्बत कि आप यही बड़े कमर्शियल बैंक्स के पास जाएं एंड एक्सपेक्ट देम टू डू 5% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन हाउसिंग फाइनेंस बाय द एंड ऑफ 2021.
सो इवन अगर हम उस वाले तबके को भी देख लेते हैं, टीयर जीरो को भी देख लेते हैं, अंडर दिस नई स्कीम, इट्स गोइंग टू वर्क विद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. अगर आप बिल्कुल निचले तबके को भी देख रहे होते हैं, बट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो जो लोग समझते हैं, जिन लोगों ने देखा है, उनको अंदाजा होगा कि ना इस नौयत के लोन को अंडर राइट करने की स्किल और केपेबिलिटी ना एक्सपीरियंस रखते हैं, ना इस टेन्योर के भी. This is as far as my obviously assessment and reading has been. So this is
tenure explain karne ke liye, because most people might not understand ke isme agar typical loan aapka hota hai 3 se 5 saal ka, housing ka loan aapka hoga 15 se 20 saal ka, theek hai. Loan amount jo agar aapka loan amount jo hoti hai, LTV ek cheez hoti hai, loan to value ke aap kis value ki cheez le rahe hain aur ab uske liye aapko kitna loan chahiye. For housing abhi I think latest jo aapka hai usme 85% or 90% अलाउ कर दिया है, विच मीन्स के बहुत कम डाउन पेमेंट, 10% डाउन पेमेंट अपफ्रंट देनी पड़ेगी. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल विद दैट. सेम थिंग विद कमर्शियल बैंक्स जो कि यूज्ड टू थे 50% डाउन पेमेंट होने की इन द पास्ट, तो आपको स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस चाहिए होंगी.
आल्सो शॉर्ट आउट टू स्टार्टअप दैट आई नो कॉल्ड मॉड्यूलर टेक, जो क्योंकि फैज ने बात की थी मॉड्यूलर हाउसिंग की, आई एम नॉट श्योर हाउ दे फिट, how well they've been able to fit into this equation, but that's something exciting to look forward to. I think they were called in initial days, if I remember, of Investors Lounge. After 2 years pehle mujhe yaad hai Asad Umar had called them up and also appreciate them on. I'm not sure, but I think a lot of bahut sare idaron ko iske sath milkar kaam karne ki zarurat hai. Even developers ko confidence, construction walon ko confidence lene ki, ispe bahut allegations aayenge, ispe aayega ke rent seeking hai, ispe aayega ke bahut sari cheeze aayengi ispe, theek hai na, amnesty kyun de di, ye chor wo chor, bahut sari cheeze, lekin is ye problem itna bada hai, agar isko sath leke nahi chala, and this is where I think you can cut the government a little bit of slack, ki agar isko sath leke nahi chala itne bade bade idaron itne, to aapka important piece of the equation jo hai, without that, ये चल नहीं पाएगा. जितने भी हैं 5 million चले, rhetoric भी मान लेता हूँ, but a reasonable progress has to be seen in this regard. Otherwise, it's going to be a massive, massive problem much before 2023. Faiz, I don't know if you have anything else to add, because we like to keep it as short as possible this time. अगर आपने कोई इसमें एक्सटेंसिव डिटेल्ड कोई चीज देखनी हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू फैज एट मैक्रो पाकिस्तानी. यू नो, यू कैन गो बाखबर की इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं. वी कैन ऑब्वियसली हैव अ लुक एट दिस. हमने नहीं इसको कवर करने में कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इन स्कीम्स की, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंटरव्यू हो जाता. मे बी वी कैन, इफ पॉसिबल वी कैन कवर इट लेटर ऑन, बट इतना आज के लिए आपके लिए काफी है ये समझना कि पाकिस्तान का हाउसिंग क्राइसिस, जैसे बिजली के लिए तो बड़ा अलग मसला था ना कि यह बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अंधेरे में है. हाउसिंग का तो सीवियर शॉर्टेज है, जो कि 17 मिलियन को शायद देख रहा है 2025-2026 में. इसके क्या असरात हैं, रेंट बढ़ने के वो जो प्रॉब्लम है, क्या असरात हैं. ये जनरेशन जो मेरी फैमिली में भी, बहुत सारे फैमिलीज में बोला जाता है, इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जनरेशन अपना घर कभी नहीं बना पाएगी, तो वो उसकी तरफ जो देखने वाला है रुझान, वो भी बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सा है. सो वी ऑल हैव, वी ऑल आर कंसर्न्ड विद दिस. शायद कोई बहुत सारे तबके जो है इस पे ज्यादा होंगे, बट थैंक यू फॉर हैविंग दिस डिस्कशन अगेन फैज. थैंक यू फॉर नॉट ओनली इल्यूमिनेटिंग अस विद कि करंट कंडीशंस क्या है, बट इसकी हिस्ट्री क्या रही है, सो दैट पीपल हैव अ मोर नुआंस्ड, नो मोर बैलेंस्ड व्यू ऑफ कि इशू क्या है. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल वी कवर द नेक्स्ट पॉसिबल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान and its solution, that's a problem we take. So until next time, Allah Hafiz.